पूज्य स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना है कि वे हम सभी को प्रभु कथा से रसपान कराएं। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण। एक सवा मिनट का मेडिटेशन करेंगे, ध्यान सभा, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे पीछे दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। छोटा सा 12 अक्षर का मंत्र है। 5 वर्ष के छोटे बालक ध्रुव के द्वारा नारद के निर्देश में 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो पाई, तो हम सबके लिए आशा है कि इस जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर सके। तो ये पहला मंत्र मैं बोलूंगा तो आप पीछे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमोत प्राप्ति हो पाई तो हम सबके लिए आशा है कि इस जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर सके। तो ये पहला मंत्र मैं बोलूंगा तो आप पीछे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में पहली प्रार्थना माता कुंती की है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए रथ के ऊपर आरूढ़ हो चुके हैं हस्तिनापुर से जाने के लिए। माँ कुंती के प्रार्थना के ये शब्द, एक माता को पहला स्थान है भागवत में। श्री कृष्ण ये शब्द सुन के रथ से उतर आते हैं, तो एक माता भगवान को अपने हृदय में विराजमान करती है, हम सबके लिए आशा है। आइए कुंती महारानी की प्रार्थना के ये शब्द सब हमारे पीछे दोहराए। कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च।
देवकी नंदनाय च।
नंद गोप कुमाराय।
नंद गोप कुमाराय।
गोविंद गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद के माध्यम से कलयुग के लोगों के दुख ताप संताप हरने के लिए कली संतन ने उपनिषद में 16 अक्षर के इस मंत्र का निर्देश ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता कह रहे हैं नारद जी को। आप सब हमारे पीछे बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम।
हरे राम हरे राम।
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप सबने हमारे साथ ध्यान में भाग लिया, निश्चित रूप से आध्यात्मिक अनुभव का हृदय में आपको एक अलौकिक आनंद महसूस हुआ होगा, अनुभव किया होगा। हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं श्रीनाथ जी, ये मंदिर के संचालक करने वालों के, जिन्होंने हमको आज सेवा का ये अवसर दिया है, और आप सब श्रोताओं को जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने के लिए यहां पधारे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा गया है, शुणवतां स्वकथा कृष्ण, शुणवतां स्वकथा कृष्ण। अगर कुछ सुनना है आपको, आप कुछ सुनना चाहते हो इस दुनिया में, तो जो स्वयं श्री कृष्ण ने कही है वो कथा सुनो। कोई सुनने का विषय इस दुनिया में है तो केवल जो कृष्ण ने अपने मुख से कहा है उसको सुनो। स्व कथा, स्व मतलब स्वयं कृष्ण के द्वारा कही गई कथा। पुण्या श्रवण कीर्तन, ये जो कृष्ण की कही हुई कथा को सुनेंगे ये पुण्य है, यही पुण्य है। मानव मात्र के लिए पुण्य क्या है? कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन। लाभ क्या होगा? हृदय अंतः स्थानी, जो हृदय में भगवान बैठा है परमात्मा के रूप में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठा हुआ। सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। तो कोई भी ऐसा हृदय नहीं है जिसमें भगवान गैर हाजिर हो, सब में भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान बैठे हुए हैं शांत, लेकिन जब भगवान की कथा सुनने के लिए आप आते हैं तो भगवान एक से दम बड़े प्रसन्न और चकित हो जाते हैं, मेरी कथा सुनने जा रहा है, बड़ा बड़ा इसको उत्साह है मेरा। हमने दो चार दिन पहले किसी को कहा, आपका कोई नाम ले और आपका गुणगान करे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो ये हमारे अंदर, ये हमारा गुणगान अच्छा लगता है, ये आया कहां से? भगवान में है तब हम में आया ना, उसने ही हमको पैदा किया है, ये गुण उसमें है तब हम में आए। जैसे हमको अच्छा लगता है कोई हमारी कीर्ति गाता है, कथा करता है हमारा नाम लेके, तो भगवान की कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं भगवान हृदय में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे मित्र हैं, सुहृद सर्वभूतानाम, गीता का शांति सूत्र पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक है, सुहृद सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों का शुभ चिंतक है भगवान, सारे प्राणियों का शुभ चिंतक है। और जब वो कथा सुनने में आपको देखता है कि मेरी कथा सुनने जा रहे हैं, तो करेगा क्या? हृदय अंत स्थानी अभद्राणी धुनोती, जितना अभद्र है, जितना अशुभ हृदय में काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार पड़े उनको धो देता है सुहृद, क्योंकि वो हमारा शुभ चिंतक है। सताम, सताम का मतलब सुहृद, सताम, सताम का अर्थ होता है भक्त। जो भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए केवल घर से निकले, ये भागवत के तीसरे श्लोक में कहा है, तत्क्षणात् हृदय अवरोध्यते, अवरोध्य कहते हैं रुक जाना, भगवान एकदम रुक जाता, अरे मेरी कथा सुनने जा रहा है। तो वो लाभ क्या देता है भगवान कथा सुनने वाले को? धुनोति शहर सोहृद, धो देता है हृदय को, धोता है। कैसे? जैसे मां अपने बालक को धो के साफ करती है। जब यहां आए तो एक शब्द सुन रहे थे, मेली चादर, ये शरीर चादर शरीर को बोलते हैं। बड़ी हास विनोद की बात है, एक बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सबसे मैली गंदी दुर्गंध वाली वस्तु दुनिया में ढूंढ के आओ। जगह जगह के ऊपर गए, खुले हुए गटर को देखा, मरे हुए मुर्दे को देखा, लेकिन एक जगह से विष्टा, बहुत ज्यादा बड़ा विष्टा खुला हुआ था, बड़ी दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन ने कहा यह सबसे बुरी जगह है, यहां से दुर्गंध आ रही है, सबसे बुरा ये है। और उस विष्टा के बहुत बड़े ढेर से आवाज आई, मैं बुरा नहीं, तुम्हारा ये शरीर का मशीन खराब है, कल मैं गुलाब जामुन बर्फी काजू किशमिश था, तुम्हारे अंदर जाने से मेरा ये हाल हुआ। मेरी चादर का अर्थ ही है कि जो इसमें ढलो उसको खराब कर देता। और अर्जुन ने वापस आके यही कहा कि भगवान सबसे खराब चीज जो है ये मशीन है। इसलिए एक कवि ने कहा है, पांच तत्व का पुतला कीना, नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे अंदर माल भर दिया गंदा। सुबह आंख को ऐसे करो गंदा है, कान को ऐसे निकालो गंदा है, जहां से देखो गंदा आता है, अंदर है तो बाहर से आता है ना। बंदा तो बंदगी, बंदगी का मतलब प्रार्थना, बंदगी का मतलब भगवान के नाम का स्मरण जप करना, कि नहीं तो गंदे का गंदा, अगर ये काम नहीं करता है तो जीवन में गंदा है। तो बंदगी करना, भगवान की भक्ति करना, ये अगर नहीं करता है तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन सफाई करेगा कौन, सफाई कौन करेगा? हम अपनी सफाई स्वयं नहीं कर सकते। कर लिया होता तो कभी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते। हम नहीं कर सकते, भगवान करता है। तब ये श्लोक में भगवान कहते हैं, धुनोति सुहृद सदाम, भक्तों के हृदय के मैल को भगवान धो देते हैं। कैसे? जैसे माता धोती है, और माता, भगवान ने अपने आप को भगवत गीता में माता कहा है, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता मह, मैं जगत का पिता हूं और माता भी हूं, पालन पोषण करने वाला भी मैं हूं। तो सुनना चाहिए कृष्ण कथा जीवन में, और भगवत गीता कृष्ण कथा है जो कृष्ण ने बोली है, इसका नाम है भगवत गीता। इन दो शब्दों में भगवत महत्वपूर्ण शब्द है। गीता तो कोई भी गीत हो सकता है, लेकिन ये भगवान का गीत है, और भगवान भी कृष्ण भगवान का गीत है, कृष्ण भगवान का गीत है। और ये गीता भगवान से अभिन्न है, भगवान के वचन और भगवान में कोई अंतर नहीं। भागवत और भगवान श्री कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है, भगवान के समान, भगवान के सम। भगवत मतलब भगवान के सम। भगवत गीता कैसे भगवान के समान है? भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है। इसके ऊपर अपन एक भगवत गीता के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे आज, कि भगवत गीता और भगवान अभिन्न है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना, इसका अर्थ है भगवान के साथ बैठ के बात करना। श्री भगवान वाच मतलब भगवान बोल रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हो तो आप सुन रहे हो, तो उससे आपका इतना संबंध स्थापित होना चाहिए। और संबंध कैसा भगवान से आपका होना चाहिए, ये भगवान ने अर्जुन को कहा है, भक्तोसी में सखाचेति रहस्यम हई तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, इसलिए भगवत गीता के रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवत गीता को समझने के लिए कम से कम हमारे को कृष्ण भक्त बनना अति आवश्यक है, नहीं तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। स्थापित होना चाहिए। और संबंध कैसा भगवान से आपका होना चाहिए, ये भगवान ने अर्जुन को कहा है, भक्तोसी में सखाचेति रहस्यम हई तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, इसलिए भगवत गीता के रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवत गीता को समझने के लिए कम से कम हमारे को कृष्ण भक्त बनना अति आवश्यक है, नहीं तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भगवत गीता में जो अंतिम शिक्षा भगवान की है, उसमें भी पहला शब्द कहते हैं भावमद भक्त, मन मना भावमद भक्त, मेरे भक्त बनो। ये कृष्ण का आदेश है, मेरे भक्त बनो। कैसे बने? माम नमस्कुर, मुझे नमस्कार करो। मुझे नमस्कार का मतलब क्या हुआ? कि मुझे अपना सर्वस्व मान लो। नमस्कार किसको करते हैं? जो हमसे बड़ा है, जिसके आगे हम निम्ते। नमस्कार का अर्थ है नम, नमम, मेरा नहीं आपका सब कुछ, आप है सब कुछ, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। मस्तक को झुकाने का मतलब अहंकार को समाप्त करना, नीचे झुकने का मतलब अपना अहंकार समाप्त करना। सर्वधर्मान परित्यज्य की यही परिभाषा है कि अपने अहंकार को छोड़ो और मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। और अर्जुन ने भगवद गीता के अंत में जब ये कहा, करिष्य वचनम तव, जो आपके वचन में आप कहा वही मैं करूंगा, इसको भक्त कहते हैं। भक्त वो जो भगवान कहे वो करे। और आश्चर्य लगेगा जब भगवान को अर्जुन ने दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में कहा, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानुष्ठं ब्रवी तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं परपनम। धर्म के विषय में मैं विचलित हो गया, युद्ध करना या न करना ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा श्रेय किसमें है निश्चित करके बताइए। भगवान ने कहा क्यों बताऊं, बोला शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। अब अर्जुन शिष्य बन रहा है भगवान का, समझ रहा है मित्र मंत्रणा दे सकता है, नियंत्रण नहीं कर सकता है। नियंत्रण करने के लिए शिष्य बनना आवश्यक है। इस दुनिया में ज्ञान शास्त्र पढ़ के आ सकता है, लेकिन अहंकार बढ़ जाएगा साथ में कि मुझे ज्ञान आ गया। अहंकार को नीचे करने के लिए आपसे बड़ा होगा उसके शरण में जाना जरूरी है, तब शिष्य बनोगे तब अहंकार समाप्त होगा, नहीं तो अहंकार समाप्त नहीं होगा। अहंकार समाप्त करने के लिए कामी क्रोधी लोभ वाले सब तर गए, ऐसे आपको उदाहरण मिल गया। अहंकारी कभी कोई दुनिया अंतर नहीं पाता है। अहंकारी का अहंकार तब कम होता है जब वो शरणागत होता है, शिष्य बनता है, गुरु के चरणों में बैठता है, तब उसका अहंकार समाप्त होता है। शिष्य मैं आपका शिष्य हूं अर्जुन कहता है। भगवान कहते क्यों भाई शिष्य क्यों बन रहे हो, क्या तुमको जरूरत पड़ गई। बोला साधी मां मुझे शिक्षा दीजिए, मैं नाम का शिष्य नहीं बनना चाहता हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। और भगवान ने 18 अध्याय भगवद गीता अर्जुन को शिक्षा दी। जब तक अर्जुन का एक भी संशय था तब तक भगवान उसके संशय का समाधान करते रहे। गुरु का काम है शिष्य के संशय का समाधान करना। तद विधि प्रणिपाते न, भगवान को प्राप्त करना, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम भगवत गीता में तद विधि, उसकी विधि क्या, प्रणिपाते न, जाओ प्रणाम करके उसके चरणों में बैठ जाओ। प्रणाम करके चले मत जाओ, बैठ जाओ। पातेन का मतलब है प्रणाम में नहीं है, शब्द है प्रणी पातेन। पातेन का मतलब होता है जैसे आदमी गिर जाता है, प्रणाम करके गुरुजनों के चरणों में बैठ जाओ। बोले बैठ के क्या करा, परिप्रश्नेन। प्रश्नेन भी नहीं लिखा है, कृष्ण बहुत, कृष्ण जब बोलते हैं श्री कृष्ण तो बहुत ही सूक्ष्म बात बोलते हैं। प्रश्नेन नहीं बोला है, परिप्रश्नेन, परे के प्रश्न पूछो, दिव्य प्रश्न पूछो, भगवत धाम जाने के प्रश्न पूछो, जन्म मृत्यु से मुक्त होने के प्रश्न पूछो, संसार के किसी तुच्छ चीज के प्रश्न मत पूछो, परिप्रश्ने न। तब वो महात्मा उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तब तुम्हारे को वो ज्ञान का उपदेश करेगा। कहां से ज्ञान मिला उसको, प्रश्न उठता है, कहां से ज्ञान मिला, कैसे उपदेश करा। ज्ञानी नाम तत्व दर्शन, उसने ज्ञानियों के संग में बैठकर अपने गुरुजनों की सेवा करके तत्व का दर्शन किया है। इसलिए संप्रदाय वहिना मंत्र निष्फल, जो मंत्र संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा नहीं मिलती, जैसे किसी यूनिवर्सिटी से बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, किताब बाजार से खरीद के कोई पढ़ा देगा उससे डिग्री नहीं मिली चलेगी वो, तो इस भारतवर्ष में इस आध्यात्मिक जगत में संप्रदायें चलती हैं। चार वैष्णव संप्रदाय है, एक संप्रदाय शुरू की है लक्ष्मी जी ने, श्री संप्रदाय, रामानुज आचार्य उसके प्रवर्तक बने। एक संप्रदाय शुरू की है ब्रह्मा जी ने, जिसमें मध्व आचार्य हुए और मध्व संप्रदाय शुरू हुई। एक संप्रदाय रुद्र, भगवान शंकर परम वैष्णव, उन्होंने शुरू की, उसमें विष्णु स्वामी जी पधारे, उसमें महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के अंतर्गत वो संप्रदाय चल रही है वैष्णव। और एक चार कुमारों ने संप्रदाय शुरू की जिसमें निम्बार्क आचार्य हुए और ये संप्रदाय, ये चार यूनिवर्सिटी हैं, ये चार परंपराएं हैं, परंपराओं में मर्यादाएं चलती आती हैं, भगवान से ये शुरू होती हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा लोगे तब प्रमाणित शिक्षा मानी मानी जाएगी, जैसे किसी का यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तभी डिग्री आपकी माननीय है। तो गुरुजन वो हैं जो परंपरा में शिष्य बने हैं, पहले कोई शिष्य नहीं बनता है वो गुरु नहीं बन सकता है, पहले शिष्य बने हैं तब गुरु बनेंगे। इसलिए शिष्यों की परंपरा कही जाती है, गुरुओं की परंपरा नहीं कही जाती है। डिसाइपलिक सक्सेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, डिसाइपलिक सक्सेशन, शिष्यों की परंपरा। तो वो ज्ञान देगा, तो भगवत ज्ञान प्राप्त करने की शैली ये है। तो भगवान का ज्ञान भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, उसको समझने के लिए भगवान का भक्त बनना अनिवार्य है, और भक्त बनने के लिए नमस्कार करना पहले है। मभव मत भक्तो माम नमस्कुरु, मद याजी मेरी पूजा करो। कैसे पूजा करें? मेरी कथा सुनो, मेरा कीर्तन सुनो, मेरे को घर में पधराओ, मुझे भोग लगाओ, तो भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। जीवन में भगवान के साथ जब तक संबंध स्थापित नहीं हुआ तब तक जीवन व्यर्थ है। संसार से मुक्त भी हो जाओ लेकिन भगवान से संबंध नहीं है तो जेल से आदमी निकले लेकिन दरवाजे के ऊपर खड़ा हो, बाहर किसी को पहचानता नहीं हो तो क्या करेगा? जेल से मुक्त हो गया, गेट के ऊपर खड़ा है लेकिन बाहर किसी को जानता नहीं है तो उसको कौन सा सुख मिलेगा? कोई सुख नहीं मिलेगा उसको। आप आ रहे हैं आप हिंदुस्तान से बहरीन में, कोई एयरपोर्ट के ऊपर लेने आता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो नए देश में तो पता नहीं कहां जाना है। तो संबंध स्थापित करने का मतलब भगवान जब हम यहां से जाएंगे तो लेने आएंगे, इतनी तो करना कृपा जब प्राण तन से निकले। सांवरा निकट हो जमुना जी का, गंगा जी का तट को बंसी बट हो सांवरा, ये भक्त की प्रार्थना कि भगवान राधा जगराधिका जी को भी साथ ले आना। खुद गर्ज की है गर्जी अर्जी, मैं खुद गर्ज हूं, खुद गर्ज हूं मतलब कोई बात नहीं, मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूं लेकिन आप आना जरूर, तो इसको बोलता है संबंध स्थापित करना। तो भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है। इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, ये बात कर रहे थे। नवे अध्याय का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, बोलिए, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। ये बड़ा मधुर श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है। इससे पहले दो श्लोक हैं स्वर्ग में जाने के, नवे अध्याय में इससे पहले जो दो श्लोक है ना, तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रैदम धर्मम अनोपर्पणा गतागतम काम कामालभन्ति। अरे बड़े अच्छे पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग का पुण्य क्षीण हो जाता है, वापस मृत्यु लोक में आके गिरते हैं। लेकिन दूसरे अनन्यास चिंतयन्तो माम, दूसरे किसी अन्य का नहीं केवल मेरा चिंतन करते हैं। अनन्यास, एक आप रोज मंत्र पढ़ते हैं तुमेव माता च पिता, इस पूरे मंत्र में एक शब्द मुख्य है एव, एक एव शब्द संस्कृत का छोटा है लेकिन सबसे मुख्य शब्द है एव, तुम ही माता हो और कोई नहीं। एव का मतलब और कोई नहीं, अनन्या और एव, तुम्हारे अलावा और कोई माता नहीं है मेरी, तुम ही पिता हो। ये संसार वाले तो यहां रह जाएंगे लेकिन आप सदा रहने वाले पिता हो, आप ही पिता और कोई नहीं। एव का मतलब ओनली, एक्सक्लूसिवली। अनन्यास चिंतयन्तो माम, और जब माम कहा तो ये श्लोक जब अर्जुन को कृष्ण ने कहा तो कृष्ण ने अर्जुन के कंधे के ऊपर हाथ रखा, बोला अनन्यास न माम चिंतयन्तो, ठीसी ना ठोक बोला माम चिंतयन्तो, अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो अर्जुन ने पूछा कौन, बोला ये जनाः, सारी दुनिया को खुली दावत है, खुला निमंत्रण है, कोई भी, भगवान उसको बोलते हैं जो सबका है, किसी एक का नहीं, कोई भी, ये जनाः, कोई भी मानव मेरा निरंतर चिंतन कर सकता है, अनन्य भाव से चिंतन कर सकता है। अनन्या चिंतयंतो मां ये जनः परियुपासते। परियु का मतलब सब जगह, सब जगह का मतलब धरती पे, आकाश में, पानी में, कहीं भी हो। परियु का परिय पे ने उपासते केवल नहीं लिखा है, उपासते का मतलब उप मतलब नजदीक, आस्ते का मतलब बैठना, मेरी पूजा कैसे करो, मेरा चिंतन कैसे करोगे, मेरे पास में आके बैठना, मेरे पास में आके बैठना। उपासना का मतलब जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, मुखिया जी भगवान के पास जाएंगे ना, बांसुरी हाथ में देंगे ना, भोग की थाली आगे, इसको उपासना बोलते हैं। उपासना का मतलब निकट में जाना, लेकिन परियुपास्त का अर्थ हर जगह। परियुपास्त स्थान का सूचक है, सततम काल का सूचक है। काल का मतलब हर समय और यहां हर जगह। भगवान का चिंतन कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी किया, कोई चीज जगह अपवित्र नहीं है भगवान के चिंतन के लिए। ये इससे ध्वनित हो रहा है, परियुपासते अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परियुपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। नित्य, ये नित्य आ गया, वो था, वो काल था और ये समय है। नित्य मतलब हर 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 दिन, हर रोज। नित्य का मतलब रेगुलरली, नेम से। युक्ता, युक्ता का मतलब जुड़ना, जुड़ा हुआ। भगवान को कहते हैं जुगल जोड़ी, जो बिल्कुल निकट में सटा हुआ है उसको युक्ता बोलते हैं। आपने एक बच्चे गेम खेलते हैं देखा है, वो लूडे के ऊपर खेलते हैं, वो चार खाने होते हैं और चार गोटियां होती हैं। जब एक आदमी की दो गोटियां एक दूसरे को ऊपर बैठती है ना, उसको युग बोलते हैं, वो युक्त है, उसको युक्त बोलते हैं। और जब युग बन जाता है, पीछे वाली गोटी उसको मार नहीं सकती। ये खेल में खेल जब देखा है, नहीं मार सकती है ना। तो यहां युक्ता का मतलब है भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उसका काल भी निकट नहीं आ सकता है। उसको बोलते हैं भगवान से युक्त, नित्य युक्ता उपासते। मनु अर्जुन ने कहा, भगवान आपके आपके पास ही बैठे रहे, आपको ही देखते रहे, आपका ही सेवा कर रहे, घर कैसे चलेगा? ये प्रश्न उठ सकता है ना। तब भगवान ने कहा, योगक्षेमम वहामि अहम्, तुम्हारी कमी मैं पूरी करूंगा, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा। लेकिन ये वहामि शब्द हिंदी में वहामि से वाहन हो गया, वाहन मतलब गाड़ी जो भार ढोती है। अर्जुन आचार्य एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाभारत के ऊपर टीका लिख रहे थे, इस श्लोक के ऊपर आए तो वहामि शब्द को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। भगवान के कंधे के ऊपर किसी को उठा के लाके देगा? कहीं शब्द गलत ना हो, ददामी होना चाहिए। वहामि कैसे, कलम कलम निकाला है, लकीर निकाला है शब्द के ऊपर, चला गया भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण, भिक्षा नहीं मिली, ब्राह्मण घर नहीं पहुंचा, उससे पहले दरवाजा खटखटाया किसी ने, ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, छोटा सा सुंदर बालक कंधे के ऊपर लाठी, लाठी में दो टोकरी और दो बास्केट के अंदर, मां चावल है, दाल है, घी है, दही है, दूध है, सब्जी है, बेटा कहां से लाया? बोला ब्राह्मण ने भेजा है, मां ब्राह्मण ने भेजा है, आप लीजिए, भोजन की सामग्री महाराज ने भेजी है। और नीचे उतार के रख रहा था तो मां ने देखा बच्चे की पीठ के ऊपर लाल किसी ने लाठी मारी, ऐसा निशान था। मां बोलती, बेटा तुमको ये कैसे चोट लगी, किसने मारा? बोला मां ब्राह्मण ने मारा, मुझे आने में देर हो रही थी। बेटा ब्राह्मण तो बड़ा कोमल स्वभाव का है, आपको कैसे मारा? बोला मां मुझे मारा, मुझे आने में देर हो रही थी। मां ने कहा, बेटा तुम बैठो, मैं भोजन पका लेती हूं, भगवान को भोग लगाती हूं, प्रसाद खा के जाना, महाराज आते होंगे। मां अंदर गई, भोजन पकाया, बालक तो कहीं चला गया, पंडित जी घर में आया, भिक्षा नहीं मिली थी, तो पंडित ने बोला कोई बात नहीं, आप उपवास कर लेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं भाई तो उपवास है। लेकिन आते ही ब्राह्मणी ने उसका सत्कार किया, जल दिया, आसन दिया, भोजन परोसा, पूरी दही। बोला ये कहां से आया, आज तो भिक्षा मिली नहीं। बोला महाराज आपने तो भेजा था, आपने ही तो भेजा था, अब पूछते हो, मैं अब पूछती हूं कि उस छोटे बालक के ऊपर इतना सामान लादा क्यों, और लादा तो देर हो गई, तो उसको मारा क्यों, पीठ के ऊपर चोट थी लकड़ी की। ब्राह्मण कहता है क्या कह रही हो, किसकी बात कर रही हो? बोला आपने भेजा था, बालक आया था बहुत सुंदर। ब्राह्मण बुद्धिमान था, सर पीट के बोला, मैं तो 50 साल से इस भागवत को पढ़ता आ रहा हूं, भगवान को नहीं समझ पाया, लेकिन तुम भाग्यशाली हो के ठाकुर जी तुम्हारे घर में अपने कंधे के ऊपर भोजन की भार उठा के आए। भोजन नहीं किया, पंडित उठ के अर्जुन आचार्य गया, अपने पुस्तक को देखा तो जहां लकीर लगाई थी वो लकीर नहीं थी, वो वहां भी शब्द को सत्य माना कि कंधे के ऊपर उठा के अपने भक्त का भगवान पोषण करते हैं। तो ये श्लोक इसलिए बताया, टाइम अपना समाप्त हो रहा है, कि भगवत गीता और भगवान में अंतर नहीं है। एक एक अक्षर भगवत गीता का, भगवान के मुख सा भगवान का स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, भागवत भगवान का अंग है, भगवत गीता भगवान का अंग है, रामायण भगवान का अंग है, एक 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 अक्षर उनके शरीर के ऊपर रोम है, ऐसा रोम है। और भगवान के इस भगवत गीता को अध्ययन करने से भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, लेकिन भक्त बनना अति आवश्यक है। और भक्त बनने के लिए भगवान को नमस्कार करना, भगवान को प्रतिदिन स्मरण करना, भगवान का स्मरण के द्वारा, ये एक सरल मार्ग कल युग में सब महात्माओं ने बताया है। आज की वाणी को यहां विराम देते हैं, भगवद गीता की कथा को। शुक्रवार को भगवान ने चाहे तो बड़े हाल में फिर भगवद गीता के ऊपर सत्संग करेंगे, आप सबको निमंत्रण है। और हमारे सहिष्णु कृष्ण प्रभु यहां भी शुक्रवार को सत्संग करते हैं, आप आते आना चाहे तो भगवद गीता सुन सकते हैं। फिर हम एक बार आभार प्रकट करते हैं, यहाँ जो ठटाई बाटिया समिति के ट्रस्टियों का, जिन्होंने हमको आज सेवा का ये अवसर दिया, और आप सब श्रोताओं का धन्यवाद करता है कि बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुना। भगवान श्री कृष्ण आप सबको, कृष्ण अपनी मति दे, भक्ति दे, इस शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। भगवान लाल की,
हम सोमवार सत्संग में आने वाले सभी भाइयों और बहनों का अहो भाग्य है कि आज आपकी अमृतवाणी हमें सुनने मिली।